Uma dhyana tamandasya gyanjana salakaya chaturan mulitandhyan chaturan mulitandhyan maha. Nama om Vishnu Padaya Krishna Bhastaya Buddhaya Shimari Bhakti Vedanta Swami Vinami Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharini Nirvasesha Shimari Pasikari Shani Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasti Gaurava Sivindam
Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna, Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare.
So Bhagavad Gita chapter 3 text 13.
Srimad Bhagavad Gita adhyay 3 shlok sankhya 13.
Yagya shishta sinasanto
Yagya sinasanto
Chante sarvakil vishay
Chante sarvakil vishay
Munjate te tvagam papa
Munjate te tvagam papa
Yepa chanti atmakaranat
Yepa chanti atmakaranat.
Translation: the devotees of the Lord are released from all kinds of sins because they eat food which is offered first for sacrifice. Others who prepare food for personal sense enjoyment verily eat only sin.
अनुवाद: भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए भोजन को ही खाते हैं. अन्य लोग जो अपने इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं वे निश्चित रूप से पाप को खाते हैं.
Purport: the devotees of the Supreme Lord are the persons who are in Krishna consciousness are called Shantas, and they are always in love with the Lord as described in the Brahma Samhita 538 Primanjana Chirita Bhakti Lochanena Santa Sadaiva Rishu Vilokayanti.
Bhagavad Bhakton ya Krishna Bhavana Bhavit Purushon ko Santa kaha jata hai. Ve sadaiva Bhagavat Prem mein nimagna rehte hain jaisa ki Brahma Samhita mein kaha gaya hai. Primanjana Chirita Bhakti Vilochanena Santa Sadaiva Rishu Vilokayanti.
The Santas, being always in a compact of love with the Supreme Personality of God, is Govinda, the giver of all pleasures, or Mukunda, the giver of liberation, or Krishna, the all-attractive Supreme Person, cannot accept anything without first offering it to the Supreme Person.
Santagar Shri Bhagwan Govinda ya Mukund ya Krishna ke pragad prem mein magna rehte hain. Iske karan se koi bhi vastu param purush ko arpit kiye bina grahan nahi karte hain. Phalta aise bhakt prithak prithak bhakti sadhanon tatha shravan kirtan smaran archan adi ke dwara yagya karte rehte
hain. Therefore such devotees always perform yagyas in different modes of devotional service such as shravanam kirtanam smaranam archanam etc. And these performances of yagyas keep them always aloof from all kinds of contamination of sinful association in the material world.
Phalta aise bhakt prithak prithak bhakti sadhanon ke dwara yatha shravan kirtan smaran archan adi ke dwara yagya karte rehte hain jisse ve sansar ki sampurna paap mein sangati ke kalmash se dur ho jate hain.
Others who prepare food for self or sense gratification are not only thieves but are also eaters of all kinds of sins.
अन्य लोग जो अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए भोजन बनाते हैं वे न केवल चोर हैं अपितु सभी प्रकार के पापों को खाने वाले हैं.
How can a person be happy if he is both a thief and sinful?
जो व्यक्ति चोर तथा पापी दोनों हो वो भला किस तरह से सुखी रह सकता है?
It is not possible.
ये संभव नहीं है.
Therefore, in order for people to become happy in all respects, they must be taught to perform the easy process of Sankirtan Yagya in full Krishna consciousness.
अतएव सभी प्रकार से सुखी रहने के लिए मनुष्यों को पूर्ण कृष्ण भावनामृत में संकीर्तन यज्ञ करने की सरल विधि बताई जानी चाहिए अन्यथा संसार में शांति या सुख नहीं हो सकता.
Otherwise, there can be no peace or happiness in the world.
इस तरह से इसके बिना कोई दुनिया में किसी भी प्रकार की शांति या सुख नहीं हो सकता है.
यज्ञ शिष्टा से न संतो मुच्छन्ते सर्वकिल विषय बुंजते ते प्रथम पापाये पचन्ति आत्मकारणात्. The devotees of the Lord are released from all kinds of sins because they eat food which is offered first for sacrifice. Others who prepare food for personal sense enjoyment verily eat only sin.
भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए गए भोजन प्रसाद को ही खाते हैं. अन्य लोग जो अपने इंद्रिय सुख के लिए भोजन करते हैं वे निश्चित रूप से पाप खाते हैं.
So this is very very important shloka, very important point that Lord Krishna is making here.
ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है इसे भगवान कृष्ण सुना रहे हैं.
Because everybody is engaged in eating practically every day.
और क्योंकि सभी लोग प्रत्येक दिन ही भोजन करते हैं.
And according to the kind of food one eats, his consciousness will be influenced.
और जो जैसा भोजन करता है उसकी भावना उसी प्रकार की हो जाती है.
Elsewhere in Gita, Krishna has described there are foods in a ignorance, foods in passion, foods in a mode of goodness, and accordingly person's consciousness and behavior will be influenced.
और भगवद गीता में भगवान ने भोजन की विभिन्न मात्राओं का वर्णन किया है. मनुष्य अपने अपने स्वभाव के अनुसार भोजन को स्वीकार करते हैं.
For example, meat is considered in the mode of ignorance, as is alcohol. Those things which are like fermenting or rotting.
जैसे कि तामसिक लोग हैं, वो शराब और मांस को लेना पसंद करते हैं.
And generally, it tends to make persons more aggressive.
और ये जो है मनुष्य को और अधिक क्रोधी बना देता है.
Or else make them sleep more.
और इसके द्वारा उनको नींद भी बहुत अधिक आती है.
And in Rajagun there are very hot, spicy foods.
और जो रजोगुणी है वे बहुत गर्म और मसालेदार भोजन करते हैं.
This also makes people very agitated.
और ये जो लोगों को बहुत ही उत्तेजित बना देता है.
And mode of goodness means the fruits, vegetables, grains tend to make people more peaceful.
और सात्विक लोग जो है सब्जी साग इत्यादि खाना पसंद करते हैं, इससे उन्हें अधिक शांति प्राप्त होती है.
But still, even if a person is eating foods in the mode of goodness, if they are not offered to Krishna, he will get some karmic reaction from the eating.
यदि कोई भले ही बहुत ही सात्विक भोजन करता है, लेकिन यदि उसे भगवान को अर्पित नहीं करता है, तो वो कुछ कर्मिक प्रभावों के अंतर्गत आ सकता है.
Even the vegetarian is getting some karmic reaction.
और यदि वो केवल शुद्ध शाकाहार ही लेता है, तो भी वो इसके चंगुल में फंस सकता है.
Because he's not offering the food to Krishna, so he's killing some kind of entity, even vegetables, in order to eat. But not offering to Krishna, so there is some karmic reaction.
तो भले ही इस तरह से मनुष्य जो होता है किसी प्रकार की हत्या कर देता है, भले ही खाने के लेकिन वो सब्जियों की हत्या करता है, लेकिन इसलिए यदि वो भगवान को अर्पित नहीं करता है, तो कार्मिक जो बंधन होते हैं उनके चंगुल में फंस जाता है.
Of course, the more developed the consciousness of a living entity that is killed, the more the reaction. The more strong the reaction, the greater the reaction.
और जैसे जैसे ये जो हत्या की मात्रा बढ़ती जाती है, वैसे ही वैसे उसका प्रभाव भी पड़ता रहता है.
For example, killing animal has bigger karma than killing vegetable.
जैसे कि अगर पशु की हत्या की जाए तो ये पाप बड़ा है, जबकि अगर साग सब्जी काटी जाती है तो ये पाप छोटा हो सकता है.
Among animals, killing cows has more reaction than killing, say, goat, chicken.
और यदि पशुओं में भी गाय की हत्या की जाए तो ये और ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि बकरी इत्यादि की हत्या इतनी महत्वपूर्ण नहीं है.
And killing human being has even greater reaction.
और उससे भी बढ़कर मनुष्य की हत्या करना है.
Some cannibals they eat other human beings, so this is a very heavy reaction.
और कुछ लोग तो मनुष्यों का मांस भी खाते हैं, इसका प्रभाव बहुत बड़ा होता है.
Among killing Brahmins or Vaishnavas, among all types of human beings, that has the greatest reaction.
और समस्त मनुष्यों में भी ब्राह्मण या वैष्णव की हत्या करना सबसे बड़ा पाप है.
So the least reaction we can say is in eating the vegetarian food.
और सबसे छोटा पाप हमें शाकाहार खाने में लगता है.
But still there is some karma.
और उस पे भी लेकिन कुछ कर्म हो सकते हैं.
But if that food is offered to Krishna, then Krishna is saying here that one is released from the sins, from the karma.
और यदि उस भोजन को भगवान को अर्पित किया जाता है, तो भगवान स्वयं कह रहे हैं कि वो समस्त पापों से मुक्त हो जाता है.
By offering food to Krishna, it becomes prasadam.
भगवान को अर्पित करने से भोजन प्रसाद बन जाता है.
And by eating prasadam, instead of karmic reaction, one makes spiritual progress.
और भगवान का प्रसाद खाने के कारण कोई कार्मिक जो प्रभाव है उनसे मुक्त होकर अपनी आध्यात्मिक उन्नति कर सकता है.
One is reminded of Krishna and one is purified.
और वो शुद्ध हो सकता है और भगवान का स्मरण कर सकता है.
So one should change the way that he eats. If he does that, just by doing that, he makes spiritual progress.
और इस तरह से अपने भोजन के ढंग को बदलने के द्वारा मनुष्य आध्यात्मिक उन्नति कर सकता है.
So of course this applies not only to what we eat.
तो ये प्रश्न नहीं है कि हम क्या खाते हैं.
But also to our various kinds of activities and our various kinds of talking.
और प्रश्न ये भी है कि हमारे कर्म किस प्रकार के हैं, हमारा वार्तालाप करने का ढंग किस प्रकार का.
Thinking, feeling and willing, we are all active on mental platform, vocal platform and physical platform.
पाप तीन प्रकार से होते हैं, मनसा वाचा कर्मणा.
Thinking, speaking and acting, these three levels.
तीन प्रकार के पाप होते हैं, सोचने के द्वारा, बोलने के द्वारा और करने के द्वारा.
So one has to try to practice to speak in a Krishna conscious way, think in a Krishna conscious way, and act in a Krishna conscious way.
तो इस तरह से सब मनुष्यों को अभ्यास करना चाहिए कि वो कृष्ण के लिए बोले, कृष्ण के लिए सोचे और कृष्ण के लिए कर्म करें.
Krishna says in Gita, the thoughts of my pure devotees dwell in me, their lives are surrendered to me, and they derive great satisfaction and bliss from enlightening one another and conversing about me.
और इस तरह से भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है, जो अपने मनसा वाचा कर्मणा तीनों प्रकार के पाप समस्त कर्म मुझे अर्पित कर देते हैं, वो परम शांति को प्राप्त करते हैं.
So we should try to make all the aspects of our life Krishna conscious.
तो हमें अपने जीवन का मुख्य केंद्र बिंदु भगवान कृष्ण को, कृष्ण भावनामृत को बनाना चाहिए.
Usually it will be easier on the physical platform.
और ये इस भौतिक जगत में सबसे आसान है.
And second most easy will be vocal platform.
और ये इस भौतिक जगत में सबसे
second most will be vocal speaking platform. First most easy to be Krishna conscious in the physical platform, second most in the speaking platform.
सबसे आसान भगवान के लिए कर्म करना है, उससे आसान भगवान के लिए बोलना है.
And most difficult in mental to always think of the Lord.
लेकिन ये सबसे बड़ी समस्या है मन के द्वारा भगवान का चिंतन.
Mind has tendency to wander and think of so many things.
क्योंकि मन जो है हमारा विभिन्न प्रकार की वार्ताओं में फंसा रहता है.
But we can start by acting for Krishna, by eating Krishna conscious food and by doing some physical service for the Lord.
हम लोग भगवान का प्रसाद खाने के द्वारा, भगवान की सेवा करने के द्वारा कृष्ण भावनामृत की शुरुआत कर सकते हैं.
Just like we can come to the temple, we can make some offering, we can do something, clean the temple or help to distribute prasadam or books or do some practical service.
तो ये जैसे कि मंदिर में आ सकते हैं, यहाँ प्रसाद भगवान को अर्पित कर सकते हैं और कुछ प्रसाद ले सकते हैं, मंदिर की सफाई कर सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं.
We can organize in our home some Hare Krishna program, some Namahatta program.
और हम अपने घर में किसी कीर्तन का प्रोग्राम, नामहट का प्रोग्राम आयोजित कर सकते हैं.
We can donate something to Krishna.
और भगवान के लिए कुछ दान भी दे सकते हैं.
So in this way we can work, do some work, some practical service for Krishna.
और इस तरह से हम भगवान के लिए कुछ प्रत्यक्ष सेवा कर सकते हैं.
And then on the speaking platform, we can be always chanting Hare Krishna as much as possible.
और बोलने के वाचा में हम लोग किसी प्रकार से हर समय भगवान का नाम स्मरण कर सकते हैं.
Or reading Gita. Discussing the philosophy of Krishna consciousness.
और भगवद गीता पढ़ सकते हैं और कृष्ण भावनामृत का दर्शन जो है उस पर विचार कर सकते हैं.
So by making the physical activities and the speaking activities Krishna conscious, this will influence the mental activities more and more.
और जब हम लोग इस प्रकार से कर्मों के द्वारा भगवान की सेवा करेंगे और वाणी से भगवान की सेवा करेंगे, तो इससे हमारे लिए मानसिक चिंतन आसान हो जाएगा.
So then more we can think of Krishna, then the more we will become peaceful.
और जितना ज्यादा हम भगवान के बारे में सोचेंगे, उतना ज्यादा ही हम शांति प्राप्त करेंगे.
And if we practice, then in the end of life, last moment of our life, we can remember Krishna. We will have a better chance to remember Krishna.
और यदि हम हमेशा भगवान का स्मरण करते हैं, तो हम अंतकाल में अपने जीवन के अंतिम समय में भगवान का स्मरण कर सकते हैं.
So Krishna of course says that one who remembers him at the time of death, that one can attain to him, one can attain his nature.
और भगवान कृष्ण ने कहा है, जो अंतकाल में उनका स्मरण करता है, वो उनको प्राप्त कर सकता है, उनके आध्यात्मिक लोक को प्राप्त कर सकता है.
We can go back to Godhead, back to the spiritual world.
और हम भगवान के पास वापस जा सकते हैं, आध्यात्मिक जगत में वापस जा सकते हैं.
So that should be our goal, to go back to the spiritual world.
तो ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि भगवान के पास.
And to help others go back to spiritual
और
world.
अन्यों की भी मदद करनी चाहिए भगवान के पास पहुँचने के लिए.
So we do this by following this process chanting Hare Krishna, serving Krishna, eating Krishna prasad, associating with Krishna's devotees.
और इस तरह से हम भगवान के भक्तों का संग करने के द्वारा, भगवान का प्रसाद लेने के द्वारा ये कार्य बहुत आसानी से कर सकते हैं.
So, thank you.
धन्यवाद.
हरे कृष्ण.
हरे कृष्ण.
Any question?
कोई प्रश्न है?
If any person has any doubt in his mind, doesn't mean this is a reaction of his sinful activity, or does this mean some impurity in his heart? What does it mean? Sometimes people, they have doubt, saying it's Indian mythology, or this is like some theoreticals, they're not believing fully what Krishna said.
तो प्रभु जी ने प्रश्न किया है कि कई बार कुछ लोग जो होते हैं वो भगवान की भक्ति में विश्वास नहीं करते हैं, तो क्या ये उनके पाप कर्मों का परिणाम है या ये हृदय की अशुद्धता के कारण होता है?
Well, could be different reasons, could be due to a sinful behavior.
बहुत से कारण हो सकते हैं, जैसे कि कुछ पापपूर्ण व्यवहार.
But could be due to his training and upbringing that he has been taught to speculate a lot.
और जब उसे शिक्षा दी जाए तो वो सुधर सकता है.
Could be also he has a questioning mind and he's trying to understand seriously, so he may have some doubt.
और उसके मन में कोई प्रश्न भी हो सकता है जिसे वो गंभीरता पूर्वक जानना चाहता हो, अपने प्रश्नों का समाधान चाहता हो.
But then he should try to study Shastra and associate with the devotees and realize the Krishna conscious answers, not only theoretically but practically.
तो वो जब ऐसा मन में प्रश्न होगा तो वो शास्त्रों को पढ़ेगा, भक्तों का संग करेगा और केवल सोचने के दिखाने के लिए नहीं, वास्तविक रूप से भगवान के आदर्शों का पालन करें.
Krishna consciousness is a very practical process. It is a process that, you know, by which one has to realize the spiritual reality through practice. It is not attainable just by thinking or speculation. It is a question of steady practice.
तो ये जो कृष्ण भावनामृत है ये बहुत ही व्यवहारिक है, ये मात्र सोचने या कहने का नहीं है, ये वास्तव में व्यवहारिक जीवन में उपयोग करने है।
But in any case, wherever the doubts come from, in whichever way they come, Krishna is saying that they should be slashed with the weapon of knowledge.
और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है,
they should be destroyed with the weapon of knowledge.
और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है वो ज्ञान के द्वारा भी डिस्ट्रॉयड कर सकते हैं, पतन किए जा.
So it is not ordinary knowledge, but spiritual knowledge, transcendental knowledge.
तो इसलिए हमें किसी साधारण ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, हमें आध्यात्मिक ज्ञान की आवश्यकता है.
And that means a realized knowledge.
और इसका मतलब है एक व्यवहारिक ज्ञान.
So we have to study carefully what Krishna is saying. We have to follow Krishna's instructions, and then we can realize higher happiness of spiritual life, and that will automatically dissipate the doubts. It will dissolve the doubts.
और हमें ध्यान से भगवान के की वाणी को पढ़ना चाहिए, उसका पालन करना चाहिए, और यदि हम ऐसा करते हैं तो हमारे हृदय के सारे संशय नष्ट हो जाएंगे.
And as we know, actually, this is Prayagraj, and sometimes we can find so many gyanis here and some Sanskrit pandits. They're saying sometimes yes, we can get knowledge, but actually, what has been real knowledge and how people they can get this knowledge? I mean, what is real knowledge? Because sometimes the people, I think, they know so much local this that. And how we can get this knowledge?
यहाँ माघ मेले में प्रभु जी ने कहा, यहाँ माघ मेले में बहुत से बड़े-बड़े ज्ञानी आए हैं, पंडित आए हैं. वो कहते हैं कि मात्र ज्ञान प्राप्त करने से ही उद्धार हो सकता है. तो प्रभु जी का प्रश्न है, वो वास्तविक ज्ञान है क्या और वो कैसे प्राप्त किया
जाए? As we mentioned, the real knowledge is a realized knowledge. That means to be absorbed in devotional service of Krishna.
ये वास्तविक ज्ञान है कि भक्ति पूर्वक भगवान कृष्ण की सेवा में लगा जाए.
So it is a knowledge which is shown in a practical behavior of a person.
और ये ज्ञान जो है मनुष्य के व्यवहारिक जीवन में देखा जा सकता है.
That he is always absorbed in a devotional service, Krishna conscious activities.
और इस तरह से पहचाना जा सकता है कि वो हमेशा भगवान कृष्ण की भक्ति में सेवा में लगा रहे.
And how to get that? We get that by associating with Krishna's devotees and following the process of Krishna consciousness in the association of devotees.
तो इस तरह से हमें भक्तों का संग करना चाहिए और उनके निर्देशन में ही भक्ति के जो मार्ग हैं उनका अनुसरण करना चाहिए.
By associating with jnanis or non-devotees, we won't get that knowledge. We won't be able to put this knowledge into practice.
और यदि हम बहुत बड़े बड़े ज्ञानी और पंडितों का संग करते हैं तो हमें ये वास्तविक ज्ञान नहीं प्राप्त हो पाएगा.
Devotees are very seriously engaged in the practical aspects of Krishna consciousness.
लेकिन भक्त जो है वो बहुत गंभीरता पूर्वक भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं.
So in their association, we can develop that kind of realized practical knowledge.
और उनके संग के द्वारा इस प्रकार का व्यवहारिक ज्ञान हम प्राप्त कर सकते हैं.
So thank you. Hare Krishna.
Hare Krishna.
Srila Prabhupada ki
jai.
Srimad Bhagavad Gita ki
jai.
Gaur Premanand.
Hare Krishna.